एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudadventist.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudadventist.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से।
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
अब समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर, परमेश्वर का सेवक, परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूँ। आइए हम परमेश्वर का वचन सुनने से पहले परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, हमारे मनों को और हमारे हृदयों को खोल दे जब हम तेरे वचनों को सुनते हैं। विशेषकर मेरे श्रोताओं के संग हो पिता, उन्हें तेरे वचन समझने के लिए मदद कर और तेरा रास्ता में चलने के लिए मदद कर। मेरे संग हो पिता, तेरा पवित्र आत्मा का दान दे ताकि मैं तेरे वचनों को तेरे सामर्थ के द्वारा बतला सकूँ। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुना ग्रहण करें, आमीन। प्यारो, आज का मेरा संवाद का शीर्षक है पौलुस और विद्रोह। पौलुस परमेश्वर का शक्तिशाली सेवक था। उसके लेखन में महान विवाद विषय की भरमार है। पौलुस पहले साउल कहा जाता था। उस समय वह परमेश्वर और उसके लोगों के विरोध काम करता था। परमेश्वर के लोगों को वह सताता था, उन्हें बंदीगृह में ले जाता था और तरह तरह का सताने का कार्य करता था। लेकिन एक दिन परमेश्वर उससे मिला और उसका रास्ता को बदल दिया। वह परमेश्वर के लिए नया मनुष्य बन गया और परमेश्वर का सच्चा भक्त, सच्चा सेवक बन गया और परमेश्वर का काम दिल जान से करने लगा। परमेश्वर उसे महान तौर से इस्तेमाल किया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पौलुस न केवल शैतान की वास्तविकता में बल्कि उसके धोखे और मृत्यु के कार्य की वास्तविकता में भी विश्वास करता था। कई जगहों पर पौलुस ने शैतान की योजनाओं, जैसे कि हम इफिसियों 6:11 में पाते हैं, उसके शक्तिशाली धोखे 2 कुरिन्थियों 11:14 में, और यहाँ तक कि उसकी अलौकिक शक्तियों के बारे में चेतावनी दी। अलौकिक शक्तियों के विषय में वह 2 कुरिन्थियों 2:9 में बतलाता है। हम पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों 15:54 में, पौलुस यहाँ लिखते हैं, जब नाशवान अविनाश को पहन लेगा और मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया। लेकिन जैसा कि पौलुस को पढ़ने वाले सभी लोग जानते हैं, प्रेरित का जोर हमेशा मसीह और हमारे लिए उनकी अंतिम जीत पर रहा है। हालांकि शैतान ने सदियों से परमेश्वर के वाचा के लोगों पर विजय पाने में सफलता प्राप्त की है, लेकिन शैतान यीशु के विरुद्ध पूरी तरह विफल रहा और यीशु में वाचा के सभी वादे पूरे हुए हैं। इस प्रकार उन सभी के लिए उद्धार निश्चित हुआ है जो विश्वास और आज्ञाकारिता में इसका दावा करते हैं, यहूदी और गैर यहूदी भी। मसीह की वफादारी शैतान के अंतिम विनाश, इब्रानियों 2:14 में लिखा है, और महान विवाद के अंत को भी सुनिश्चित करती है। आज हम कुछ छवियों और रूपकों पर गौर करेंगे जिनका प्रयोग पौलुस ने युद्ध की वास्तविकता को समझाने में किया था, और यह भी कि हमें किस प्रकार जीवन जीना है तथा इस ब्रह्मांडीय संघर्ष में लगे हुए विश्वासियों के समुदाय और कलीसिया के रूप में समग्र भलाई के लिए मिलकर काम करना है। पौलुस आदम और यीशु के बारे में समानता और तुलना करता है। इसके बारे में वह अपने पत्रियों में लिखा है। विशेषकर हम रोमियों 5 में हम पढ़ेंगे, जबकि पौलुस को सुसमाचार की स्पष्ट व्याख्या के लिए जाना जाता है, महान विवाद के बारे में उसकी व्याख्या भी महत्वपूर्ण है। सुसमाचार की शिक्षा देने के दौरान वह अपने मुख्य बिंदुओं पर सारांश देता है। हम यीशु के द्वारा विश्वास से धर्मी ठहराए गए हैं, रोमियों 5:1। हमारे पास परमेश्वर तक सीधी पहुंच है और हम आशा में आनंदित हैं, रोमियों 5:2। और क्लेश अब हमें परेशान नहीं करते, रोमियों 5:3-5। वह हमें यह वादा भी देता है कि जब हम पापी ही थे, मसीह हमारे लिए मरा, रोमियों 5:8। और यह कि अब हम मसीह के जीवन और मृत्यु के द्वारा बच गए हैं। हम पाप के विरुद्ध परमेश्वर के अंतिम न्याय से भी बच गए हैं, रोमियों 5 का 9 से 10 में हम पाते हैं, और हम आनंदित हैं कि हम उसके साथ मेल मिलाप कर चुके हैं। रोमियो 5 का 11। मसीह ने हमारे लिए जो कुछ किया है उसके बारे में बात करने के बाद पौलुस समझाता है कि यीशु ने यह कैसे किया। पहला आदम शैतान का परीक्षा में गिर गया और उस फल को खाया जिसे परमेश्वर ने हिदायत दिया था कि वे उसे ना खाए, और यदि वे खा जाते हैं तो वे मर जाएंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जंगल में जब शैतान उसे फुसलाया कि वह चट्टान को या पत्थर को रोटी बनाकर खाए जब वह भूखा था, यीशु मसीह ने जवाब दिया। व्यवस्था और वचन में लिखा है कि मनुष्य रोटी से केवल जीवित नहीं रह सकता है बल्कि परमेश्वर के हर वचन से। प्रभु यीशु मसीह वचन से शैतान को जीता। पवित्र शास्त्र से प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को जीता। जब तक बगीचे में पेड़ पर आदम द्वारा किए गए नुकसान को ठीक नहीं किया जाता तब तक अनंत भविष्य की कोई उम्मीद नहीं होगी और शैतान महान विवाद में विजय होगा। आदम ने जो किया उसके कारण सभी को मौत के घाट उतार दिया, रोमियो 5:12 कहता है। यहाँ तक कि सिनै पर्वत पर 10 आज्ञाएं देने से भी मृत्यु और पाप की समस्या को रोका नहीं जा सका। व्यवस्था ने केवल स्पष्ट किया कि पाप क्या है, यह पाप का उत्तर नहीं था। पाप और मृत्यु की समस्या का समाधान केवल यीशु के बलिदान के माध्यम से किया जा सकता था। यीशु ने अपने जीवन के अनुग्रहकारी उपहार के माध्यम से ऋण का भुगतान किया। हम पाते हैं रोमियो 5:15-16 में। इस तरह हम देखते हैं कि पहला आदम निंदा और मृत्यु लाया, परंतु दूसरा आदम जो कि प्रभु यीशु मसीह है परमेश्वर से मेल मिलाप लाया और जीवन लाया। परमेश्वर पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा, कहता है रोमियो 5:8। इसलिए अपना नाम वहां लिखाइए और अपने लिए उस वादे का दावा कीजिए। मसीह की कलीसिया चाहे वह कितनी भी कमजोर और दोषपूर्ण क्यों ना हो, पृथ्वी पर एकमात्र वस्तु है जिस पर वह अपना सर्वोच्च सम्मान प्रदान करता है। एलन जी वाइट कहती है इन हेवनली प्लेसेस पृष्ठ 284 में। आगे हम चर्च भवन के विषय में चर्चा करेंगे। पौलुस अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अब चर्च को या कलीसिया को एक इमारत के रूप में वर्णित करते हैं। कोई व्यक्ति नींव रखता है और फिर कई अन्य लोग उस पर निर्माण करते हैं। पहला कुरिन्थियों 3:10 कहता है क्योंकि नींव कोई और नहीं बल्कि मसीह है। पहला कुरिन्थियों 3:11 कहता है तो जो लोग उसका अनुसरण करते हैं उन्हें इस बात के बारे में सावधान रहना चाहिए कि वे किस तरह की सामग्री का उपयोग करते हैं। आने वाला न्याय घटिया और उपयुक्त निर्माण सामग्री के बीच अंतर करेगा, पहला कुरिन्थियों 3:12-15 दिखलाता है। पहला कुरिन्थियों 3:12-15 में यदि हम पढ़ेंगे तो पाएंगे कि हमें किस तरह सही वस्तुओं का इस्तेमाल करना है, और इसका हम तुलना कर सकते हैं मत्ती 7:24-27 जहां यीशु मसीह कहते हैं कि जो उसके बातों को सुनते हैं और उसको मानते हैं उसके अनुसार चलते हैं वे उस व्यक्ति के समान हैं जो अपना घर चट्टान के ऊपर बनाया है। जब आंधी और तूफान आएगा वह नहीं गिरेगा नहीं धसेगा क्योंकि वह चट्टान के ऊपर बना हुआ है। इसी रीति से हमें आपको और हमें प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनना है और उसमें विश्वास करना है और उसके पीछे चलना है, तब हमारा जीवन जैसा कि घर चट्टान पर बना है वैसा यीशु मसीह के वचन पर बना रहेगा जो कि नहीं गिरेगा जो स्थिर रहेगा। अब आगे क्या हुआ इस पर गौर करें। पौलुस कहते हैं पहला कुरिन्थियों 3:16-17 में क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह मंदिर तुम हो। हमें दो बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है प्यारो। पहली बात यह कि संदर्भ चर्च या कलीसिया और उसके निर्माण के बारे में बात कर रहा है, यह मुख्य रूप से स्वास्थ्य के बारे में बात नहीं कर रहा है। यहाँ पर परमेश्वर उन लोगों को नष्ट नहीं करता जो खराब जीवन शैली विकल्पों के साथ अपने शरीर का दुरुपयोग करते हैं, वे खुद को नष्ट कर देते हैं। दूसरी बात यह है कि इन दो आयतों में जब भी तुम सब का उल्लेख किया गया है तो यह यूनानी में बहुवचन है, किसी व्यक्ति को संबोधित नहीं किया जा रहा है बल्कि एक समूह को। इसलिए यदि कोई भी कलीसिया को नष्ट करने के लिए कुछ भी करता है तो वह गंभीर संकट में है। परमेश्वर चेतावनी देता है कि वह उस व्यक्ति को नष्ट कर देगा जो चर्च को या कलीसिया को नष्ट करने की कोशिश करता है। आगे हम देखेंगे एक निकाय के रूप में चर्च। पौलुस हास्यास्पद तरीके से बोलते हैं, आश्चर्य करते हुए, कि अगर पैर या कान कहे कि वह शरीर का हिस्सा नहीं है तो क्या होगा। पौलुस आगे सोचते हैं कि अगर पूरा शरीर आंख या कान होता तो क्या होता। पहले कुरिन्थियों 12:17 में आप देख सकते हैं। कल्पना कीजिए कि एक बड़ा कान हमें नमस्ते कहने के लिए कमरे में इधर उधर फड़फड़ाता है। यह सुनने में भले ही हास्यास्पद लगे लेकिन ऐसा वास्तव में तब होता है जब लोग चर्च को इस तरह नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं जैसे कि वे उसके एकमात्र मालिक हों। ऐसा नहीं हो सकता है प्यारों। इससे पहले पौलुस ने कलीसिया में विभिन्न गतिविधियों की रूपरेखा दी तथा प्रत्येक को पवित्र आत्मा का उपहार बताया। कुछ लोग बुद्धि से बोलते हैं और कुछ ऐसे हैं जो पवित्र शास्त्र के बारे में बहुत ज्ञान रखते हैं। 1 कुरिन्थियों 12:8। कुछ ऐसे भी हैं जिनका विश्वास सभी के लिए प्रेरणा है और कुछ ऐसे हैं जो चंगाई देते हैं। कुछ चमत्कार करने वाले हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास भविष्य सूचक अंतर्दृष्टि है, कुछ ऐसे हैं जो अच्छे और बुरे में स्पष्ट अंतर कर सकते हैं और कुछ ऐसे हैं जो भाषा की बाधाओं को तोड़ सकते हैं। 1 कुरिन्थियों 12:10। यदि हम 1 कुरिन्थियों 12 पढ़ेंगे तो ये सब हम पाएंगे। ध्यान दे कि संबंधित व्यक्ति अपनी क्षमता का निर्णय स्वयं नहीं कर सकते, इसके बजाय पवित्र आत्मा ने उनमें से प्रत्येक को भिन्न पृष्ठभूमियों से चुना है ताकि वे शरीर कलीसिया का निर्माण करें और उसमें एकता लाएं। 1 कुरिन्थियों 12:11-13। इस महत्वपूर्ण तथ्य पर जोर देने के लिए पौलुस अपने आप को दोहराता है, कहता है परमेश्वर ही निर्णय करता है कि प्रत्येक सदस्य कहाँ फिट बैठता है। 1 कुरिन्थियों 2:18। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कई अंगों के बावजूद शरीर एक ही है। प्रत्येक अंग सभी अन्य अंगों से महत्वपूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है, यहाँ तक कि वे भी जो खुद को बहुत मूल्यवान नहीं समझते। 1 कुरिन्थियों 12:20-24। इस परस्पर निर्भरता में प्रत्येक की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए अंतर्निहित सुरक्षा है। परस्पर निर्भरता तब काम आती है जब दुख और खुशी साझा की जाती है। 1 कुरिन्थियों 12:26। आगे हम देखेंगे परमेश्वर का कवच और उस पर बात करेंगे जो हमें इफिसियों 6 में पढ़ने को मिलता है। महान विवाद की वास्तविकता और यह कि हम एक वास्तविक शत्रु के साथ वास्तविक युद्ध में हैं, हम पाते हैं इफिसियों 6:11 में। इसमें इफिसी 6:124 में पौलुस द्वारा युद्ध की कल्पना के प्रयोग से प्रकट होती है। यह युद्ध वास्तविक है प्यारो। यह मायने नहीं रखता कि कवच के विभिन्न टुकड़े किस बारे में हैं, बल्कि यह मायने रखता है कि वे किसका प्रतिनिधित्व करते हैं। ध्यान दे कि पौलुस इस बात पर जोर देता है कि हमें सभी कवच पहनने की जरूरत है, ना कि सिर्फ चुनिंदा कवच। ऐसा करने से हम खड़े रहेंगे। बाइबल में न्याय में निर्दोषता का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक रूपक भजन 1:5 से हम तुलना कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में हम विजयी होंगे। सभी कवच को अपनी जगह पर बनाए रखने वाला पट्टा है, जिसे सत्य के रूपक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, इफिसियों 6:14। इसलिए सत्य ही वो है जो हमारे सभी आध्यात्मिक सुरक्षा कवच को अपनी जगह पर बनाए रखता है। यीशु अक्सर सत्य के बारे में बात करते थे। यूहन्ना 1:14-17 में हम पा सकते हैं, और यूहन्ना 14:6 में भी। धार्मिकता का कवच इसके बाद आता है, इफिसियों 6:14। यीशु के प्रवचनों में धार्मिकता एक और महत्वपूर्ण शब्द है। पुराने नियम में धार्मिकता को न्याय को बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने के रूप में समझा जाता था कि सभी को उचित व्यवहार मिले। सैन्य चप्पल, जिसके बारे में हम इफिसियों 6:15 में पढ़ते हैं, शांति के सुसमाचार का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो यशायाह 52:7 से उधार लिया गया एक भाव है, जो उन लोगों के बारे में बताता है जो कैद में लोगों को यह बताने के लिए लंबी दूरी तक पैदल चलते हैं कि यरूशलेम का पुनर्निर्माण किया गया है और परमेश्वर ने अपने लोगों की स्वतंत्रता को बहाल कर दिया है। यह कहने का एक और तरीका है कि बुराई के खिलाफ लड़ाई का एक हिस्सा लोगों को यह बताना है कि परमेश्वर ने पहले ही युद्ध जीत लिया है और वे अब खुद के साथ, दूसरों के साथ और परमेश्वर के साथ शांति से रह सकते हैं। विश्वास की ढाल आग के तीरों को उनके इच्छित लक्ष्य पर लगने और व्यापक विनाश का कारण बनने से रोकती है। उद्धार का टोप, इफिसियों 6:17, उस मुकुट के समान है जिसे यीशु ने हमारे साथ साझा किया है। प्रकाशित वाक्य 1:6-2:10 में हम पाते हैं, और आत्मा की तलवार परमेश्वर का वचन आत्मरक्षा का हमारा एकमात्र हथियार है, जिसका उपयोग हमें उसी तरह करना चाहिए जैसा यीशु ने शैतान द्वारा प्रलोभन दिए जाने पर किया था। मत्ती 4:4-7-10 पद में हम इसे देख पाते हैं। महान विवाद में कवच की परिपूर्णता और संपूर्णता हमें परमेश्वर पर हमारी पूर्ण निर्भरता के बारे बताती है। प्यारो, हमें सुनिश्चित कर लेना है कि हमारा किसी भी हिस्सा असुरक्षित ना है। इसलिए हमें परमेश्वर के दिए गए सारे सुरक्षा का कवच को पहन लेना है, जो प्रभु यीशु मसीह हमें उपहार के तौर पर देता है, जिसे हम विश्वास के द्वारा उसे पहन सकते हैं। यह प्रभु यीशु मसीह का उपहार है हमारे लिए। अंतिम शत्रु को हमें हराना है। जाहिर है कि कुरिन्थ के कलीसिया में कुछ लोग पुनरुत्थान के बारे में भ्रमित थे। पौलुस ने सुसमाचार के एक प्रमुख तत्व के रूप में इसके महत्व को सावधानी पूर्वक समझाया। ऐसा लगता है कि जो विश्वासी मर चुके हैं उनके बारे में कुछ चिंता है, 1 कुरिन्थियों 15:6। और कुछ लोग सुझाव दे रहे हैं कि जो लोग मर चुके हैं वे यीशु की वापसी से चूक जाएंगे, यह थिस्सलुनीकियों की कलीसिया की स्थिति के समान है। 1 थिस्सलुनीकियों 4:13-17 में आप पढ़ सकते हैं। पौलुस अपने तर्क का निष्कर्ष यह कहकर देता है कि यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों में सबसे अधिक दयनीय हैं, 1 कुरिन्थियों 15:19। इसके विपरीत मसीह वास्तव में जी उठा है और सो गए लोगों में पहला फल बन गया है, 1 कुरिन्थियों 15:20 पद इसे कहता है। फिर पौलुस मसीह की तुलना आदम से करता है। जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही यीशु मसीह में सब जिलाए जाएंगे। हालांकि आदम को शुरू में हमेशा के लिए जीने के लिए बनाया गया था, लेकिन मानव जाति जल्दी इतनी बिगड़ गई कि वह अपेक्षाकृत कम समय तक ही जीवित रह सकी। अगर हमें अनंत जीवन विरासत में मिलना है तो हमें हमेशा के लिए जीने के लिए बनाया जाएगा और यही हमें दिया जाएगा। इसमें आप विश्वास करिए। ना केवल मनुष्य बल्कि पृथ्वी भी पाप के कारण दुष्ट के नियंत्रण में आ गई थी और इसे छुटकारे की योजना के द्वारा बहाल किया जाना था। अपनी रचना के समय आदम को पृथ्वी पर प्रभुत्व दिया गया था, लेकिन प्रलोभन के आगे झुकने के कारण वह शैतान की शक्ति के अधीन हो गया और जो प्रभुत्व उसके पास था वह उसके विजेता शैतान के पास चला गया। इस प्रकार शैतान इस दुनिया का देवता बन गया। उसने पृथ्वी पर उस प्रभुत्व को हड़प लिया था जो मूल रूप से आदम को दिया गया था। लेकिन खुशखबरी है भाइयों और बहनों, मेरे प्यारों, कि मसीह ने पाप के दंड का भुगतान करने वाले अपने बलिदान के द्वारा न केवल मनुष्य को छुड़ाएगा बल्कि उस प्रभुत्व को पुनः प्राप्त करेगा जिसे उसने खो दिया था। पहले आदम द्वारा जो कुछ खोया गया था वह दूसरे आदम मसीह द्वारा बहाल किया जाएगा। यह बहुत बड़ा खुशखबरी है। इसीलिए आइए हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करें और उसके पीछे चले। वह हमें हरेक पाप पर विजय दिलाएगा, शैतान से विजय दिलाएगा और हमें अनंत जीवन देगा। आदम हमारा पहला पिता जो अदन की बारी में पाप के द्वारा जो कुछ भी खोया उसे प्रभु यीशु मसीह फिर हमारे लिए वापस देगा, हमें प्रभुत्व देगा, हमें अनंत जीवन देगा। आइए हम यीशु मसीह के पास आए, उसमें विश्वास करें और उसमें विश्वास करते हुए उसके पीछे चले। परमेश्वर हम सबों को आपको बहुतायत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे दयालु महान परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, हम तुझे तेरे वचन के धन्यवाद देते हैं। हम सबों को तू स्वीकार कर पिता, विशेषकर मैं प्रार्थना करता हूँ मेरा श्रोताओं के लिए, उन्हें तेरे वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे और उन्हें तेरे रास्ता में चलने के लिए मदद कर। हम सबों को तेरे पीछे चलने के लिए मदद कर पिता, और हम सबों को तैयार कर और अनंत जीवन के लिए बचा ले, क्योंकि यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण करें, आमीन।
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1800833231 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindirsamc@sudaven.org।
मैं हूं गौरव चौहान
और मैं हूं सारा मंडोरा। AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें।
तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।